ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। दिल्ली में भीषण गर्मी से बचने के लिए सरकार ने हीट एक्शन प्लान जारी किया। दिल्ली नगर निगम के आगामी चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर पर्चा दाखिल किया। दिल्ली भाजपा ने आज राजधानी में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक सेवकों को संबोधित किया और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यातायात रक्षकों के सम्मान समारोह को संबोधित किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज। दिल्ली में भीषण गर्मी से बचने के लिए सरकार ने हीट एक्शन प्लान जारी किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस हीट प्लान को लॉन्च किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि ये योजना दिल्ली वासियों को अत्यधिक गर्मी और हीट वेव की खतरनाक स्थिति से बचाने के लिए एक वैज्ञानिक और जनोन्मुख योजना के रूप में तैयार की गई है। एक रिपोर्ट।
यह एक्शन प्लान एनडीएमए के सहयोग से डीडीए ने तैयार किया है। इस प्लान के अंतर्गत शहर भर में 3000 डिजिटल वाटर एटीएम लगाए जाएंगे। इनमें से 1000 एटीएम सड़कों पर, 1000 सरकारी परिसरों में और 1000 सुदूर क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। सरकार 1800 आपदा मित्र तैनात करेगी। राहगीरों को धूप से राहत देने के लिए सरकार फुटपाथों पर कूलिंग शेड्स बनाएगी। सरकारी भवनों और निजी इमारतों पर कूल रूफ और ग्रीन रूफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। प्लान के तहत अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष वार्ड बनाए जाएंगे। वहीं किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने लिए कैट्स एम्बुलेंस भी तैनात रहेंगी, जो कि बस्तियों में सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्लान के अंतर्गत दिल्ली के 5500 से अधिक स्कूलों के 14 लाख बच्चों को आपदा प्रबंधन और हीट वेव से बचाव के लिए जागरूक और प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
दिल्ली नगर निगम के आगामी चुनाव के लिए आज नामांकन के आखिरी दिन भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर पर्चा दाखिल किया। भाजपा की ओर से राजा इकबाल सिंह ने मेयर पद के लिए और जय भगवान यादव ने डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस की ओर से मनदीप सिंह ने मेयर और अरिबा खान ने डिप्टी मेयर पद के लिए पर्चा दाखिल किया। दोनों पदों के लिए चुनाव 25 अप्रैल को निगम की सामान्य निकाय बैठक में होगा। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली मेयर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, क्योंकि पार्टी के पास दिल्ली नगर निगम एमसीडी में संख्या बल की कमी है। दिल्ली भाजपा ने आज राजधानी में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मुस्लिम समाज को वक्फ संशोधन बिल से मिलने वाले लाभ के विषय में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 5 मई तक मंडल स्तर पर इस जन जागरण अभियान का आयोजन किया जाएगा, ताकि विपक्ष द्वारा दिल्ली के लोगों को वक्फ संशोधन बिल को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर किया जा सके। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज यातायात गार्डों की विशिष्ट सेवा की सराहना की। नई दिल्ली में यातायात रक्षकों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए श्री सक्सेना ने समुदाय के चैंपियन के रूप में संदर्भित किया। उन्होंने प्रहरी ऐप को जनता द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल तक ऐप के माध्यम से लगभग 6 लाख यातायात संबंधी शिकायतें दर्ज की गई हैं। उन्होंने यातायात प्रबंधन को सामूहिक जिम्मेदारी बताया।
इस योजना की प्रभावी रूप से संकल्पना करने और क्रियान्वित करने के लिए बधाई देता हूँ। इस योजना में जन पुलिस भागीदारी में नए मापदंड स्थापित किए हैं और मैं इसकी भी सराहना करता हूँ। मैं यहाँ सुझाव भी देना चाहूंगा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ऐप जो है कि दायरे में पार्किंग के अलावा अन्य वायोलेशंस को भी शामिल कर इसे एक्सपेंड करने की, इससे कई अन्य खतरनाक वायोलेशंस की भी रिपोर्ट हो सकेंगे।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के धीरपुर स्थित संकल्प भवन में संकल्प छात्रावास का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा को देश की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी कहा। श्रीमती गुप्ता ने आज कहा कि इस छात्रावास में देश भर से सिविल सेवा की तैयारी करने वाली छात्राएं आकर रह सकती हैं।
जिस प्रकार से आज छात्रावास का इनोग्रेशन हो रहा है और यहाँ पे देश भर के अलग अलग हिस्सों से बेटियाँ आकर के ठहर पाएंगी, वो अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर पाएंगी, अपने आप में एक बहुत अच्छी और बड़ी सुविधा है। और प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह इस तरह की फैसिलिटीज हमें स्टूडेंट्स को देनी होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस फील्ड में आगे बढ़ सकें।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार जिन नीतियों पर काम कर रही है वो अगले 1000 वर्षों के भविष्य का आकार निर्धारित करेंगी। श्री मोदी ने देश के प्रति अपने दृष्टिकोण को साकार करने में सभी से प्रतिदिन और प्रति क्षण अथक प्रयास करने का अनुरोध किया। आज नई दिल्ली में 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10-11 वर्षों में विकसित भारत की मजबूत नींव रखी गई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत प्रशासन, पारदर्शिता और नवाचार में नए मानक स्थापित कर रहा है।
पिछले 10 सालों में भारत ने कई ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव करके दिखाए हैं, उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छुआ है। भारत आज सिर्फ ग्रोथ की वजह से नहीं जाना जा रहा, बल्कि गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और इनोवेशन के बेंचमार्क आज भारत सेट कर रहा है। G20 प्रेसिडेंसी भी इसका एक उदाहरण है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में सिविल सेवकों की बड़ी जिम्मेदारी है। श्री मोदी ने सिविल सेवकों का आह्वान किया कि इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने की सभी बाधाओं को दूर करें।
2014 के बाद से देश में व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा महायज्ञ शुरू हुआ है। हम इस तेज स्पीड के साथ खुद को तेजी से ढाल रहे हैं। आज भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी, भारत के युवा, भारत के किसान, भारत की महिलाएं, उनके सपनों की उड़ान आज जिस ऊंचाई पर है वो वाकई अभूतपूर्व है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रशासन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी तत्परता से योजनाएं लोगों तक पहुंचती हैं और उनका जमीनी स्तर होता है। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलते आज के समय में हमें वैश्विक चुनौतियों पर पैनी नजर रखनी होगी। इस अवसर पर श्री मोदी ने सिविल सेवकों को जिले के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने 2 ई बुक भी जारी की। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सिविल सेवा दिवस पर सभी सिविल सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सेवा, नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन में सिविल सेवकों की भूमिका ने नागरिकों की भलाई और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत की 4 दिन की यात्रा पर हैं। इस कड़ी में आज उन्होंने दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए। अक्षरधाम मंदिर की प्रवक्ता राधिका शुक्ला ने बताया कि इस दौरान श्री वेन्स को मंदिर की ओर से एक स्मारिका भेंट की गई।
भगवान स्वामीनारायण के चरणारविंद के साथ उन्होंने यात्रा का आरंभ किया। उन्होंने भारत उपवन के दर्शन किए, वहाँ पे गजेंद्र पीठ करके बहुत ही अच्छा एक हाथी की परिक्रमा बनाई है, एलिफेंट विद नेचर, एलिफेंट विद डिवाइन और एलिफेंट विद ह्यूमन। तो वो नक्काशी देख के वो बहुत ही अभिभूत हो गए। फिर वो गर्भगृह में भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति ऐसे मनोहर दर्शन करके उन्होंने वहाँ पे विश्व शांति के लिए और सभी के बीच में सुहृद भाव और संवादिता बनी रहे उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। खादी और ग्रामोद्योग KYIC के मध्य अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में KYIC ने उत्पादन सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ोतरी दर्ज की है। दिल्ली में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि बीते वर्षों में बिक्री, उत्पादन और रोजगार सृजन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है।
हम उत्पादन हो, बिक्री हो, रोजगार हो, हमने तीनों क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को पार किया है और आने वाले समय में हम खादी ग्रामोद्योग आयोग के नॉर्थ प्लेस के स्टोर को भी हम लोग नवीनीकरण का काम करने जा रहे हैं। हमारी वेजेस पिछले 11 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 275% की वृद्धि 11 साल में वेजेस में की है।
पंजाब सरकार ने किसानों को नवीनतम फसल अवशेष प्रबंधन CRM मशीनरी उपलब्ध कराने और धान की पराली के कुशल प्रबंधन के लिए 500 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की है। राज्य ने CRM मशीनों की खरीद के लिए किसान को 50% सब्सिडी और किसान समूहों, सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों को 80% सब्सिडी देने की योजना बनाई है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में पराली जलाने की दर को शून्य पर लाना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने इस वर्ष फरवरी माह के दौरान कुल 16,10,000 सदस्यों की वृद्धि दर्ज की है। ये फरवरी 2024 की तुलना में लगभग 4% की वृद्धि को दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस वृद्धि का श्रेय बढ़ते रोजगार के अवसरों, कर्मचारी लाभों के प्रति बढ़ती जागरूकता और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की प्रभावी जनसंपर्क पहलों को दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोचिकित्सक डॉक्टर राजेश सागर और मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन इस परिचर्चा में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे विशेषज्ञों से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के हानिकारक प्रभावों के बारे में टेलीफोन नंबर और व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 0112342105 और 0112334444। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप # AskAIR के साथ एक्स पर भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2024-25 सत्र के लिए जारी अपनी अनुबंध सूची में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को A+ श्रेणी में रखा है। श्रेयस अय्यर को B श्रेणी में और ईशान किशन को C श्रेणी में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले रविचंद्रन अश्विन की जगह ऋषभ पंत को ए श्रेणी में शामिल किया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल, अभिषेक शर्मा, सरफराज खान, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा को सी श्रेणी में रखा गया है। बोर्ड A+ श्रेणी के खिलाड़ियों को 7 करोड़, ए श्रेणी के खिलाड़ियों को 5 करोड़, बी क्रिकेटरों को 3 करोड़ और सी श्रेणी के खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए वार्षिक देता है। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा, हालांकि दोपहर के समय गर्म हवा के कारण तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। आज का अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राजधानी और आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में भीषण गर्मी से बचने के लिए सरकार ने हीट एक्शन प्लान जारी किया। दिल्ली नगर निगम के आगामी चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर पर्चा दाखिल किया। दिल्ली भाजपा ने आज राजधानी में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक सेवकों को संबोधित किया और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यातायात रक्षकों के सम्मान समारोह को संबोधित किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।